जहाँ सत्य का बोध होता है, आत्मा का उद्धार होता है, आत्मा का कल्याण होता है, वहाँ पर सत्य का बोध होने के कारण जो हमारी फिर भावना बनती है, जो हमारी दृष्टि बनती है, वो बोध होने से पहले भी हम संसार में विचरण करते थे और बोध हो जाने के बाद भी इसी संसार में विचरण करते हैं। लेकिन एक ऐसा रूपांतरण आ जाता है, एक ऐसा फर्क आ जाता है, जैसे पहले भी कोई अंधकार में विचरण कर रहा हो और फिर दीपक जग उठे और फिर विचरण कर रहा है, वो अब उजाले में विचरण कर रहा है। इसी प्रकार से ये दृष्टि जब मिलती है, ये बोध जब होता है, तब पहले भेद वाली दृष्टि होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, ईस्ट वाला या वेस्ट वाला, मिडल ईस्ट वाला या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का या फिर किसी और स्थान का, पंजाबी सिंधी गुजराती मराठी, इन्हीं दृष्टियों से युक्त होकर हम औरों को देखते और उसी अनुसार उनसे व्यवहार करते। इस प्रकार से ये भेद वाली दृष्टि इसने एक दूसरे से दूर किया हुआ था। लेकिन अब जब ये दृष्टि मिल गई जो सच्चाई को देख रही है, ये बोध हो गया है, ये उजाला हो गया है, तो अब भेद वाली दृष्टि नहीं, अब सम दृष्टि है। इसीलिए जब भी संतों महात्माओं भक्तों का जिक्र हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो हर युग में गुरु पीर पैगंबर और संतों भक्तों के साथ एक शब्द जो जुड़ जाता था कि ये समदृष्टि, समदृष्ट महापुरुष, कि एक समदृष्टि वाले, एक भेद दृष्टि नहीं है, एक आत्म भाव से युक्त हैं, एक आत्मा जो परमात्मा की अंश है, उस नूर के दर्शन करते हैं, उसके ऊपर अपने मन को एकाग्र करते हैं, और उससे पहले, ये बोध होने से पहले नज़र टिक जाती थी जाकर केवल इस शारीरिक ढांचे तक, केवल पगड़ी तक या केवल टोपी तक, ये रुक जाती थी केवल उर्दू फारसी या गुरमुखी या संस्कृत या पंजाबी या लैटिन या जापानी या चाइनीज़, औरत या मर्द, ब्राह्मण या शूद्र, यहीं तक ही जाकर ये नज़र रुक जाती थी। केवल शरीर और केवल संस्कृतियाँ और कल्चर्स, खान पान पहरावे, काला रंग गोरा रंग चमड़ी का, बस यहीं तक, इससे आगे नज़र जाती नहीं थी। जो आत्म भाव कहा गया है कि एक नूर जो बसता है हर घट में, उस तक नहीं ये नज़र जाती थी। तो महापुरुष संत जनों की, ब्रह्म ज्ञानियों की संगत और उसी के प्रताप से जो ये जीवन में क्रांति घटित हुई, ये बोध हुआ, अब दृष्टि जाती है तो इस आत्मा की तरफ जाती है। परमात्मा ईश्वर निराकार दातार, जो इस आत्मा की जो का जो मूल है, तो इस निराकार दातार का एक ऐसा स्वरूप, एक आत्मा के रूप में जो विचरण करता है, तो उस प्रकार से, उस भाव से युक्त होकर अब इस जीवन के सफर को तय करते हैं, और उसी के कारण ये एक महापुरुष संत जनों के वाणी के अनुसार कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन की खलकत सारी है, तो इस तरह से उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक नूर के दर्शन किए जा रहे हैं। गागर और मटके और एक ऐसे घड़े अनेकों अनेकों, लेकिन एक है जो उसको उस रूप में देखता है कि हजारों या लाखों घड़े पानी से भरे हुए पड़े हुए हैं, लेकिन वो जिस घड़े में भी नज़र मारता है, देखता है चांद का अक्ष उसको दिखाई दे रहा है। और अज्ञानता वाले भी जो देखते हैं, वो हजारों या लाखों गागर पानी से भरे हुए और उनमें पड़ता हुआ चांद का अक्ष, और उनकी नज़र इस तक सीमित रह जाती कि एक घड़े में देखा, दूसरे घड़े में देखा, तीसरे में देखा, और ये मान लिया गया कि हर घड़े का चांद जुदा है, और इसलिए सोच लिया कि हजारों चांद हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जो जानते हैं वो हजारों लाखों घड़ों में देखते हैं, वो पहले इंसान की तरह ही, लेकिन ये उनको एहसास होता है कि चांद कक्ष जो दिखाई दे रहा है हजारों घड़ों में, लेकिन घड़े हजार हो जाएं बेशक, लेकिन चांद हजार नहीं हैं, चांद तो एक ही है। इसी एक चांद का ही अलग अलग बर्तन में अक्ष पड़ रहा है। तो ये है समदृष्टि, ये है बोध वाली दृष्टि, इसलिए वहीं तक सीमित नहीं रह जाते हैं, ना घड़े की बनावट तक सीमित रह जाते हैं कि ये घड़ा जो है काले रंग की मिट्टी से बना है या और किसी एक ब्राउन कलर की है या किसी और उसमें कुछ लाली है, वो घड़े के उस स्वरूप या रंग तक सीमित नहीं रह जाते हैं। वो केवल वही रूप देखते हैं जो एक आत्मा को जो नज़र मिलती है उसके द्वारा देखा जाता है, वो रूप देखते हैं, और वही होती है अभेदता, भेद नहीं अभेदता, जहाँ पर कोई इस तरह से डिफ्रेंसिएशन्स नहीं होते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा कोई स्कोप ही नहीं रहता जाता है। इसलिए महापुरुष यही प्रेरणा देते हैं कि हमने वो दृष्टि प्राप्त करनी है, वो नज़र प्राप्त करनी है, और उस नज़र को अगर हम विशेषता देंगे तो ये खामखा के बखेड़ों से हमारा बचाव हो जाएगा। आज अगर दुनिया और संसार की हालत को हम देख रहे हैं, एक हिंसक प्रवृत्तियों से युक्त होकर इंसान इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, इसलिए शांति नहीं अशांति है, क्योंकि वॉयलेंस है नॉन वॉयलेंस नहीं है, इसलिए एक अशांति ही अशांति चारों तरफ स्थापित होती चली जा रही है। तो इस तरफ ध्यान ये दिलाया जाता है बार बार कि वाकई ही एक शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए हमें एक अहिंसक रास्ते पे चलना होगा, हिंसा के रास्ते को तजना होगा, और हिंसा के रास्ते को तजेंगे तभी जब हमारे मन में प्रेम और करुणा का भाव पैदा होगा, और करुणा और प्रेम का भाव जब पैदा हो जाता है तो फिर हम हितैषी बन जाते हैं, ना कि फिर हम दूसरे को कष्ट देने के लिए या दूसरे पे जुल्म ढाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाते हैं। हालातों की तरफ हम लगातार देखते चले जा रहे हैं, जिन हालातों में से गुजर रहे हैं कि किस प्रकार से हिंसक रूप ऐसे घिनौने बनते चले जा रहे हैं, जहां सहूलतें कम्युनिकेशन की इतनी आसान हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी आसान हो गई, वहां पर एक इंसान की जान लेना भी बहुत आसान होता चला जा रहा है। किस कदर एक इंसान ऐसे रास्ते को अख्तियार कर चुके हैं और उसी रास्ते पे चलते जाते हुए इस धरती को नरक बनाते जा रहे हैं, और वाकई ही जो हथियार बन चुके हैं, कहीं पर भी किसी के दिमाग की नाड़ी हिले और वाकई ही नॉन एग्जिस्टेंस वाली ये स्थिति आ जाएगी। अगर डायनासोर या ऐसी स्पीसीज जो बताते हैं साइंसदान कभी हुआ करती थी, और आज कहीं हजारों साल हो गए, लाखों साल हो गए, उनका नामो निशान मिट गया, केवल कुछ अवशेष उनके मिल जाते हैं जहाँ तहाँ, लेकिन वो स्पीसीज ही मिट गई। तो इस तरह से ये भी नामो निशान मिट जाएगा इंसान का। तो अगर मानवता जिंदा रहती है तो फिर ये इंसानी जाति भी जिंदा रहेगी, लेकिन हिंसक रास्ते पे चलते हुए ना खुद कोई चैन लेते हैं ना किसी को चैन लेने देते हैं। ये एक ऐसी अज्ञानता के अंधकार में विचरण करने वाले लोगों की ये स्थिति है, और उसी स्थिति मनोस्थिति से युक्त होकर उसी साइकी के अनुसार ही वो नुकसान पे नुकसान किए चले जा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है, यहाँ पर शांतिपूर्वक जीवन जीने की बात हो रही है, यहाँ पर एक भेदभाव से ऊपर उठकर एक अभेदता की भावना से युक्त होकर एक दूसरे के हितैषी बनकर एक दूसरे को सुकून और चैन देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तमाम महापुरुषों के तमाम वचन वो इसी ओर ही हमें अग्रसर कर रहे थे, इसी तरफ ही हमें चलने की प्रेरणा दे रहे थे। तो आओ साध संगत, लेकिन नाम मानने वाली प्रवृत्ति तो प्रबल है ही। ये तो हम देख ही रहे हैं कि मैं ना मानूं कि रावण भी मैं ना मानूं, चाहे उसका भाई समझा ले, चाहे पत्नी समझा ले, चाहे कोई और समझा ले, लेकिन हठ मति और हूढ़ मति मैं ना मानूं। तो मैं ना मानूं के हश्र फिर क्या होते हैं। इसी प्रकार से जो कौरवों को बताया गया भगवान कृष्ण के द्वारा कि एक गांव, लेकिन मैं ना मानूं के कारण वो एक गांव तो दूर रहा, एक मकान भी ना रहा। तो इस प्रकार से इतिहास के पन्ने भी यही बताते। तो ये एक हूढ़मति वाले इतनी आसानी से मानते नहीं हैं और नुकसान पे नुकसान किए चले जाते हैं। तो महापुरुष संत जन यही यत्न करते हैं कि इंसानों को ये जागृति मिल जाए, इंसानों को ये एहसास हो जाए कि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस अंधकार में विचरण कर रहे हैं, जिस झूठे नशे में चूर हैं, इससे उभरना है, इससे बाहर निकलना है, ऐसी मिसकंसेप्शन से बाहर निकलना है, ऐसी एक बिलीफ से बाहर निकलना है, ऐसी एक अज्ञानता से बाहर निकलना है और सूर्य की किरणों में स्थान लेना है, ठोकरों से बचना है, भ्रमों से निजात पानी है। लेकिन इंसानों की ऐसी प्रवृत्तियां और फितरतें ये युगों युगों से ऐसी रही हैं जो आज भी हमें देखने को मिल रही हैं। आज अनेकों और भी ऐसे कारण देखने को मिलते हैं जिसके कारण इंसान एक दूसरे पे जुल्म ढाता है, कहीं लोभ लालच भी कारण बन जाता है, कहीं तृष्णाएं कारण बन जाती हैं, कहीं एक अहम कारण बन जाता है। इस प्रकार से कुछ भी कहें, लेकिन एक क्रक्स जो होगा सिचुएशन का वो यही होगा कि वाकई इंसान ने विनाश का रास्ता अख्तियार किया हुआ है। तो महापुरुष संत जन यही चाहते हैं कि इंसान ना अपना नुकसान करे, ना किसी और का नुकसान करे। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, इस धरती को जन्नत बनाने के लिए, इस प्रकार से उत्तरदायित्व तो बन जाता है एक हर किसी का, और विशेषकर उनका जिनकी सेह है, जिनके कुछ असर हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में उनके असर हैं, चाहे वो किसी मुल्कों के निज़ाम करने वाले हैं, जिनकी कुछ सेह है, जिनको किसी ना किसी रूप में कुछ सामर्थ्याएं और ताकतें मिली हैं, उनकी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो वाकई इस विनाश से बचाव करें। इसलिए महापुरुष संत जन वो निरंतर ये बार बार ये पैगाम और ये संदेश ये देते हैं। जिनकी कुछ ऐसी, जिनको ताकतें मिली हैं, जिनकी कुछ सेह हैं, उनको हम कहते हैं ये बड़े हैं। तो बड़े हैं चाहे वो हम वैसे भी जिनको एडल्ट्स कहते हैं, एडल्ट्स को भी बड़ा कहते हैं, और कुछ किन्हीं ताकतों के कारण भी बड़े, कोई रुतबों के कारण भी बड़े, और किसी लिहाज से भी देख लें तो जो एक हालात हैं वो यही दर्शाते हैं, जो शायर का शेर कि देख के बड़ों की दुनिया, एक छोटा सा बच्चा बड़ा होने से डरता है, कि किस प्रकार से एक बड़ों की दुनिया देखकर के वाकई यहाँ पर तो केवल नफरतें ही नफरतें हैं, वैरी वैर है, जलन की भावना है, एक दूसरे को दबाने की प्रवृत्ति है, एक दूसरे का सहारा तो क्या बनना है, गिरे हुए को तो क्या उठाना है, करुणा दया का भाव कहाँ पर, केवल निर्दयता, केवल कठोरता, केवल क्रूरता, इन्हीं भावनाओं से युक्त होकर जीवन जिया जा रहा है। तो एक छोटा सा बच्चा भी बड़ा होने से डर रहा है, क्या यही दुनिया होती है बड़ों की? इससे तो हम बच्चे ही बेहतर हैं। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संत जन वो निरंतर ये बात हर इंसान को ये समझाते आए हैं कि इंसान इस बात को समझें, और इस बात को समझकर वो जहां अपना उद्धार करें, अपना कल्याण करें, वहां पर इस धरती को भी राहत दें। ये जो तप रही है, जो झुलस रही है नफरतों की आग में, इससे कहीं राहत नहीं मिल रही। एक ऐसी इग्नोरेंस और प्रवृत्तियां, ये लोभ लालच इत्यादि, ये अहम, ये संकीर्णताएं, ये ऐसी बनी है कि इसने सारे वातावरण को ही बदल दिया है। सारा वातावरण ही भय वाला बनता चला जा रहा है। कोई बाजार जाने से भी कतराता है, कोई किसी और जगह पर जाने से भी कतराता है। क्लाइमेटिक चेंज हम कह रहे हैं, यहाँ पर भी वो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। वार्म कहते हैं गर्माइश, और यहाँ पर भी गर्माइश ऐसी जिसको हम तपश कहते हैं कि तपते हुए हृदय। ये तपते हुए हृदय ये सारे वातावरण में उथल पुथल कर रहे हैं। तो इसलिए इसको एक ठहराव मिले, इसका कुछ बचाव हो। ये जिस तरफ रुख लिया हुआ है हवाओं ने, उस तरफ से एक ऐसा दिशा दी जाए हवा को, यानी कि प्रवृत्तियों रूपी हवा को, फितरत रूपी हवा को, इंस्टिंक्ट्स रूपी हवा को, कि जिससे राहत मिले। इसी प्रकार से ये एक ऐसी महापुरुषों संतों की भावना हमेशा रही है, और उसी अनुसार ही महापुरुष योगदान दे रहे हैं। तो आओ साध संगत, कहने का भाव यही है कि जो महापुरुष संत जनों की वाणी जो युगों युगों से हर इंसान, हर एक मानव तक एक जागृति के रूप में पहुंचती रही है, लेकिन हर दौर में इंसानों ने उसको अपनाया नहीं, सुना तो अनसुना कर दिया, और इस तरह से अपनी ही उसी विपरीत चाल को चलते चले गए, और उसी के नतीजे हैं कि ऐसे हालातों का एक सामना करना पड़ रहा है। तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने टॉलरेंस की बात कही, सहनशीलता की बात की, लेकिन यहाँ तो एक ज़रा सी बात को भी सहन नहीं किया जाता है, कि ज़रा सी भी टॉलरेंस बाकी नहीं रह जाती है। एक दूसरे को भाते नहीं हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को कोई कदर नहीं उसकी करते हैं, एक दूसरे को कुछ महत्ता नहीं देते हैं, और इस प्रकार से ज़रा सी बात वो बतंगड़ बन जाता है। पहले ये कहावत ये अक्सर हमारी जुबानों पे होती थी कि बात का बतंगड़ बन गया है, कि बात का बतंगड़ बन गया है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि एक बात हो भी ना तब भी बतंगड़ बन जाते हैं। इस तरह की आज ये मनोस्थितियाँ ये बनती चली जा रही हैं, कितना उतावलापन ये बढ़ता चला जा रहा है। और महापुरुषों ने सहनशीलता का जिक्र किया, और सहनशीलता अगर जीवन में आती चली जाती है, एक झरना, एक कहना और एक सहना। कहना बड़ा आसान होता है, सहना बहुत मुश्किल होता है। तो आसान रास्ता ही अक्सर इंसान अख्तियार करते हैं, और वो कहने में ज़्यादा यकीन रखते हैं कि एक कोई बात है या नहीं, या एक ने कही तो दस से कम सुनाए बगैर गुजारा नहीं होता है। तो उसी के अनुसार एक कहावत कि आफ्टर वी आर बॉर्न इट टेक्स अराउंड 2 years टू लर्न हाउ टू स्पीक, बट इट टेक्स होल लाइफ टाइम टू लर्न व्हेन नॉट टू स्पीक, कि हम 2 साल के जब बच्चे के रूप में होते हैं तो हम बोलना सीख जाते हैं, लेकिन सारी उम्र बीत जाती हम नहीं सीख पाते कि कब ना बोला जाए। हम ये सोचते हैं कि बोलना ही बोलना है, एक ना बोलने से पता नहीं कितने कितने नुकसानों से बचाव हो सकता है, लेकिन नहीं बोलना है, अहम बुलवा रहा है, अभिमान बुलवा रहा है। पढ़ते हैं हम अवतार वाणी में भी पढ़ते हैं कि रब बोले ना देव अंदरों, बोलना तो रब चाहिए अंदर से, गुरु बोलना चाहिए अंदर से, लेकिन बोल रहा होता है अभिमान, बोल रही होती है संकीर्णता, बोल रही होती है जलन, बोल रही होती है नफरत। अगर वाकई ही रब बोले, वाकई ही गुरु बोले तो कोई बखेड़े नहीं हैं, लेकिन अहम बोल रहा होता है, अभिमान बोल रहा होता है, नफरत बोल रही होती है। और एक बात को इस कदर ऐसा महत्ता दी जा रही है, इतनी महत्ता दी जाती है, विच इज़ वर्थ फुली इग्नोरिंग, जिसको पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए, उसी को पूरी तरह से इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं, इतनी मजबूती से पकड़ते हैं कि मेरा जोर कम हो रहा है, मेरे हाथों पे रस्सी भी बांध दो इसके समेत, ताकि छूट ना जाए। जिसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए उसको बड़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं। तो ये यानी कि विवेक बुद्धि का खो जाना, विजडम का खो जाना, और उपदेशों की आदेशों की कदर रत्ती भर ना करना, उसी के कारण एक ज्ञानी भी अगर हो, वो भी इस प्रकार से अगर उस भाव से युक्त होकर विचरण नहीं करते, तो वाकई ही दाने भी जे छड़न भगती सौ सौ गोते खांदे ने, कि वाकई ही जो दाने कहा जाता है, कि वाकई ही दाने उसको कहते हैं कि दाना भी ना है, ये दाना है, दानिशमंदी कहाँ है कि नहीं है, ये हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से सोच है, किस प्रकार से व्यवहार है, कि कितनी वो दानिशमंदी है, कितनी वो विजडम है, कितना वो विवेक है, कितना कुछ वो एक बड़प्पन है, वो बड़प्पन, वो एक ऊंचापन, वो एक विजडम, वो किस कदर वो पहलू कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो इसलिए ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए मन मटाव बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक वॉलंटरिली अपने आप को परेशान करना हम चुन लेते हैं। एक होता है परेशान किया जाता है, एक हमारी अपनी वो तंग दिली या अपनी छोटी सोच या अपनी इनटॉलरेंस के कारण, उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वॉलंटरिली हमने चुन लिया कि हम डिस्टर्ब रहे हैं। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संत जन सुकून भरा जीवन की बात करते हैं। ठीक है, कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड एक किसी के वो हाथों से दूर होती हैं, लेकिन बहुत सारी जब ठंडे दिमाग से सोच कर देखें, बहुत सारी ऐसी ज़्यादा परसेंटेज ऐसी होगी जो वाकई ही उसके कारण हम खुद होते हैं। यानी कि ज़रा सी अपनी सोच को हम बदल लें, थोड़ा सा भी हमारी सहनशीलता बढ़ जाए, तो देखेंगे कि हमारे संबंध कितने मधुर बनेंगे, कितने हमारे मनों में इस कदर चैन की महसूसियत हम करेंगे, और इस कदर बॉन्डेज हमारी असली वो और मजबूत होती चली जाएगी। तो अवसाद संगत, दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, और दास यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करें कि आप सभी को ऐसी सुबुद्धि बख्शे, और हमेशा तमाम भक्तजन इस ज्ञान को सन्मुख रखें और ज्ञान की ज्योत जगाए रखें, और इसी रोशनी में भी आप में ही अपने कदम रखें, और इस प्रकार से गुरसिख गुरसिख का सत्कार करता जाए। जो स्थान स्थान पर दास कह रहा है अवतार वाणी में ही, जो शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन कि गुरसिख नू जा गुरसिख मिल दे वेग के चा चढ़ जाते ने, तो एक दूजे दे पैरां उत्ते न्यो न्यो सीस चुकांदे ने। तो गुरसिख को देखे तो चा चढ़ जाना चाहिए, ना कि सा चढ़ जाना चाहिए। होता कई बार ये है कि सा चढ़ जाता है, लेकिन गुरसिख नू जा गुरसिख मिल दे वेग के चा चढ़ जाते ने, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਉਂ ਨਿਉਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਵਾਕੇ ਹੀ ਯਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਯਹੀ ਤੋਂ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਹੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਭਕਤੋਂ ਸੇ, ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਭਕਤੋਂ ਸੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਕਰੁਣਾ ਕੀ, ਏਕ ਸਨੇਹ ਕੀ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਕੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੀ। ਤੋ ਵਾਕੇ ਹੀ ਏਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਏਕ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਉਸਕੋ, ਜਬ ਹਮ ਵਾਕੇ ਹੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਖੁਦ ਯੁਕਤ ਹੋ ਕਰ ਜੀਵਨ ਜੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਵੀ ਫਿਰ ਵਹੀ ਦੇਣ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ।